are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ ਆਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com QTL ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ
Sodi Furniture Store Clearance. Saving.
Sale.
Sodi Furniture Stock Clearance.
Everything on floor, to go, warehouse, furniture sale.
Ji haan, Sodi Furniture lagat ki kimat se kam kimat par furniture khareediye. Furniture ki is sale ka fayda uthane ke liye, Sodi Furniture Showroom, 142 Kennedy Road South in Brampton. Huge sale, jo le gaya, so le gaya.
Jo reh gaya, so reh gaya.
Sodi Furniture, naya saal, naya furniture. 905-874-7171 Sodi Furniture Store Clearance.
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है
मेरी सेविंग $350
मेरी सेविंग सिर्फ $100
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है मैंने सेव किए हैं $1,775
क्या चमत्कार किया मुझे भी गुर सिखाओ ना
भाई बात सादा सी है हमारे पास दो गाड़ियां और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900
Adnan Alvi, President Lifetime Group. Adnan Alvi ko kaun nahi janta? Aap pichle 15 saalon se apni community ko educate kar rahe hain ki kis tarah apni income aur apni wealth ko increase kiya ja sakta hai. Aapke liye hamesha unique aur innovative investment ideas lekar aate hain. Agar aap aaj ki badalti hui real estate market se pareshan hain aur chahte hain ki aap apne paison ko zyada secure rakhte hue maximum profit banaye to aaj Adnan Alvi se rabta kare 416-301-0249
ओह दुबई जाना है
वो क्यों
बेटी की शादी है सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है
ए छोड़ो जी एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो दुबई से बेहतर है गोल्ड जड़ाऊ जेवरात जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी चूड़ियां कड़े पेंडेंट हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है मजे की बात है डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं किस किस को बताऊं सीइंग इज बिलीविंग
एड्रेस दें
1066 एल्बियन रोड एल्बियन इज लिंगटन की नुक्कर पे व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन चोपड़ा ज्वेलर्स 416-744-7534 कनाडा में दुबई चोपड़ा ज्वेलर्स
एक जगह ऐसी है जहां ये सब कुछ हो रहा है एक जगह जो शुमाली कानों को जुनू की अशिया साजी की कुवत के साथ मुंसलिक करके अपनी मईशत की तामीर नौ कर रही है वो जगह जहां कनाडा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के पहले प्लांट्स में करीब $44 बिलियन की नई सरमायाकारियां हुई हैं जहां ज्यादा लोग काम करके ज्यादा तनख्वाह कमा रहे हैं वो जगह है ओंटेरियो ontario.ca/rebuilding our economy पर मजीद आएं हुकूमत ओंटेरियो की जानिब से अदायगी करदा
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपको होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ रंगारंग और गर्मा गर्म खबरें लेकर जो है शाजिया मलिक साहब अभी स्टूडियो आ गई हैं। आप सुन रहे हैं हमें 6478724900, इसके अलावा हमारी वेबसाइट eawaz.com और हमारा IPTV यानी ई आवाज के नाम से तमाम ही IPTV बॉक्सेस पर मौजूद है। ई आवाज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल ई आवाज टीवी रेडियो, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्त यार अहबाब से भी शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। टिकटॉक टक टक जनाब ई आवाज के नाम से जो है हमारा टिकटॉक भी है, इसको भी फॉलो कर लें और आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन और न्यूज से पहले की जो वो होता है ना कि टीजर, वो आपको अगर देखना है तो सब टिकटॉक पे जाना जनाब। ये तो अभी खबरें ऐसी, बस मैंने इनको बता दी तो पैर में ये पड़ देंगी, लेकिन वो जो असल टीजर है ना वो ओरिजिनल होता। ये तो मैंने बता दिया, सारा सारा तो खबरें मैंने इनको बता चुका हूँ, 3 बजे से मैं खबरें पढ़ रहा हूँ और क्या। चले जनाब, इनके साउंड इफेक्ट स्टार्ट हो गए इससे पहले कि इनके जूते भी स्टार्ट हो जाए एक तरफ बढ़ने के लिए, तो खुश आमदीद कह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाजी कैसी हैं?
WS सब ठीक है। मुझे लग रहा है ये जो CP24 तुमने सामने लगाया ना, ये करंची की खबरें इधर जो है ना ये चला रहे हैं। ये मर गया, ये कुत्ता मर गया, ये बंदा मर गया, ये जो है आग लग गई, ये एक्सीडेंट, मतलब ये तुमने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि करंची की खबरें अंग्रेजी में सुनाओ?
बेसिकली मैं बहुत टाइम, मुझे मेरा ये था कि थोड़ा अब कनाडा आ गए तो लाइफ में चेंज होना चाहिए, अब मुझे CP24 लगाया था, इतने में पाकिस्तानी खबरें अंग्रेजी में।
वही ना, तुम मिस कर रहे थे क्रांची,
बहुत मिस कर रहा था,
तो तुमने इनको लेटर लिखे, वो सारी क्रांची की खबरें अंग्रेजी में।
3 करोड़ की आबादी में कुत्ता मरता है उसकी भी खबर,
उसकी भी खबर है
भाई, इसको तो माफ कर दो यार।
नहीं नहीं नहीं,
कल मैं खबर देख रहा हूँ, कल की खबर में बिल्कुल आपको देखा जी, एक निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड मर गया। अबे भाई, तो ठीक है मर गया, एक इंसान था, लेकिन इसको इतना बड़ा चढ़ा के क्या?
नहीं नहीं, वो उन्होंने पूरी वो जो ना वो उन्होंने हेडलाइन ऊपर ऐसे इतनी बड़ी करनी होती है उसको, तो जी अभी ज्वाइन किए 3 दिन हुए थे और ये, बट ठीक है, अफसोस है,
वो
लेकिन अब
गलत
बस
है। लेकिन ये इतनी को ब्रेकिंग न्यूज नहीं है,
ब्रेकिंग न्यूज नहीं है ना कि आप वो ऐसे रू रू रू
रू बार बार रिपीट हो गया, सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया और ये हो गया, बिल्ली जख्मी हो गई ट्रक के नीचे।
ये जो तुमने काम किया ना इंतहाई गलत किया है, ये जो CP24 को लेटर लिखा है कि भाई मैं करंची को मिस कर रहा हूँ, मेरी करंची की खबरें अंग्रेजी में सुना, अब तुम्हारे वाली बात
401 मुझे ऐसा लगता है शायरा फैसल है।
बिल्कुल शायरा फैसल है,
कराची से जानते हैं, इस वक्त जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ ये मुझे शायरा फैसल लग रहा है या एमएजे।
बिल्कुल बिल्कुल,
यही हालात होते हैं,
हर वक्त यहाँ पे टकरें हो रही हैं और ये हो रहा है।
फिर कहते हैं कि जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया है इसके लिए, भाई ये तो इतनी बड़ी इन्होंने रिपोर्टें
डॉलर देने,
इतनी मेहनत करके आपने ये रिपोर्ट निकाली है,
मतलब हल्का पाकिस्तानियों ने
लाखों डॉलर खर्च करते हैं ये पता करने के लिए ट्रैफिक है,
ट्रैफिक
तो हमें पता है ट्रैफिक,
ये बताने के लिए कि वो महंगाई बहुत बढ़ गई,
महंगाई बढ़
यार पूछ लो साढ़े को है ना जी ना, ये जो है ये हो रहा है
जुल्म है, ये
जुल्म है बिल्कुल। अब ये सारी शरारत तुम्हारी है,
ये भी मेरी है,
तो तुमने तो लेटर लिखा CP24
तो मैं तो भाई मुझे उर्दू की जगह मतलब अंग्रेजी में
आए तो
अंग्रेजी में खबरें सुन रहे हैं।
हाँ, अंग्रेजी में
खबरें वही वाली चाहिए, चार लोग सुबह मर गए, चार शाम में मर गए, अभी आप लगाए सुबह से कितने कितने लोग मार दिए,
मार दिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वो यही चल रहा है, ये मतलब है कराची जितनी जो आबादी है उसके अंदर को 50,000 इन्होंने बता दिया है कि ये हो गया है, तो ये हो गया है, तो ये अब ये आप खबरें सुनाएंगे तो कनाडा कौन आएगा, फिर भी कुछ लोग मरे जा रहे हैं कनाडा आने के लिए,
ना मरे तो अच्छा है। वही रह जाए,
एग्जैक्टली वही है।
क्या खबरें आज की मारा मारी?
बस जी काफी खबरें हैं हमारे पास, बड़ी खतरे में नाक भी हैं और जो है हम आपको बताते हैं। बट दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह। राजा बादशाह जो है जी, इनका नंबर पहले आप नोट कर लें, 8647290373। वो कहते हैं जी अफोर्डेबल होम और ऑटो इंश्योरेंस आपको चाहिए तो मुझे संपर्क करें। ऑन्टारियोज लार्जेस्ट लाल पाकिस्तानी बफे विलेज थे, जबरदस्त इनके 2 रेस्टोरेंट्स हैं जी, खाएं एंजॉय का मजा लें। और ये इनका जो रेस्टोरेंट मिसिसागा में, उसका नंबर है 9052323663 और जो ओकविल में, उसका नंबर है 9052262294। लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट जो है अदनान अलवी साहब कहते हैं अगर आपको किसी किस्म का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, डिसेबिलिटी या RESP RRSP कुछ चाहिए तो मेरे को कॉल करो आप, इनका नंबर है 4163010249। और जनाब डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा डॉक्टर नाजिया रहमान बड़ी ही अच्छी डॉक्टर है, तो आप जरूर इनके पास जाएं और इनका नंबर है 9058200900। ठीक है जी, ऐसे है। और आपने अगर अच्छे कपड़े आपको चाहिए जो ना फटें 10 साल और ہیں تو پھر آپ جائیں سپیئر اینڈ مکے پہ. سپیئر اینڈ مکے پہ آپ کو بڑا زبردست قسم کے ہائی کوالٹی کلوز ملتے ہیں, مینس کلوز. یہ اس میں لڑکیوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو ملیں گے. آپ ادھر جائیں, نئی لوکیشن پہ آ گئے ہیں, 775 بریٹانیا روڈ ویسٹ, یونٹ 7B, مسساگا میں. اور ان کا نمبر ہے 9056703388. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, پہلی جی آپ کو خبر سناتے ہیں جناب. آج ایز وی اسپیک, آج منڈے کا دن جو ہے, تھرڈ جو ہے کنزیکٹو نان کانفیڈنس موو جو ہے وہ بےچارے جنتی ٹروڈو کے خلاف جو ہے وہ لے کر آئی ہے لبرل پارٹی. اور ابھی ان کے پاس دو دن ہیں, یعنی کہ آج منڈے کا بھی اور ابھی کل ٹیوزڈے کا بھی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ پاس اس لیے نہیں ہوئے گی کیونکہ NDP کے جگمیت سنگھ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم اس موشن کو جو ہے سپورٹ نہیں کریں گے. ہاؤس جو ہے وہ اب ووٹ کرے گا کیونکہ NDP کی کچھ مانگیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا GST بریک, اور $250 ورکنگ کینیڈینز کو ریبیٹ دیں تاکہ وہ فلی ریٹائر جو سینئرز اور لوگ ہیں اس کے اوپر ریلائی کر سکیں اور ڈسیبلٹی بینیفٹس لے سکیں. کنزرویٹو جو ہیں وہ اپنے دو دن میں, یعنی کہ آج منڈے اور ٹیوزڈے کو جو ہیں جو بحث کریں گے, پی اے پالی ایف صاحب اس کے دوران 13 موشنز لے کر آئیں گے. اچھا, آج جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ہے گورنمنٹ کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ GST آپ بالکل الیمینیٹ کرو آن نیو ہوم سولڈ فار لیس دین $1 million. اور اس کے علاوہ وہ پریمیئرز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو پروونشل سیلز ٹیکس ہے اس کے اوپر ختم کرو. اس کے ساتھ ساتھ ٹیوزڈے کو جو یہ موشنز لانے والے ہیں اس میں یہ لبرل گورنمنٹ کو کہنے والے ہیں کہ بھئی کاربن ٹیکس ختم کرو, اور یہ جو بیل اینڈ ڈرگ کی جو ہوتی ہیں جو پلیز ہوتی ہیں ان کو ذرا ٹف کریں آپ. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو لاسٹ فسکل ایئر تھا اس کا پبلک اکاؤنٹس جو رپورٹ ہے اس کو ریلیز کرو. تو اور جو آپ کو پتا یہ دوسرے جو کچھ ہیں جو جیسے کہ بلاشیہ صاحب ہیں ان کے اپنے کچھ ہیں, تو بس یہ سارے ملے جلے کچھ ڈیمانڈز ہیں. بہرحال دیکھیں گے کہ اب کیا ہوتا ہے, جو ہے کل ٹیوزڈے کو شام تک پتا چل جائے گا. لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ لبرلز ول آف کورس ویدر تھرو, یعنی کہ وہ یہ نان کانفیڈنس موو جو ہے یہ کچھ اتنا جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی, پاس نہیں ہوئے گی. پارلیمنٹری بجٹ آفیسر جو ہیں, اب یہ جو انہوں نے جگمیت سنگھ صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ GST کو آپ ایکسپینڈ کریں, GST بریک کو, اس پہ پارلیمنٹری بجٹ آفیسر نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اگر GST ہالیڈے دیا تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کاسٹ کرے گا 2.7 بلین. اور اگر پروونسز جو ہیں اگر انہوں نے اپنے سائڈ کا جو یہ کمپنسیشن ہے اس کو اگر ویو نہ کیا تو سارے کا سارا بوجھ جو ہے لبرل گورنمنٹ پہ آئے گا. لبرل گورنمنٹ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ جو فیڈرل سیلز ٹیکس ہے اس کو ختم کریں, جو کہ وہ راضی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہاں ہم بالکل ختم کریں گے بہت سارے آئٹمس پہ. یہ اب جو ان کی ساری چیز ہے لبرلز کی, یہ سٹارٹ کریں گے 14 December اس سال سے, اور یہ جائے گی 15 February 2025 کو. اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے دو ڈھائی مہینے کے بیچ جو ہے لوگ تھوڑا افورڈیبلٹی جو ہے وہ ذرا مطلب کر سکیں, افورڈ کر سکیں چیزوں کو, کیونکہ چیزیں بہت ہائی ہو گئی ہیں ہالیڈے سیزن میں. کینیڈینز جو ہیں وہ اس میں وہ کہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے 5% GST جو ہے وہ سیو کریں گے آن پرچیزز لائک کڈز کلوتھز, ویڈیو گیمز, ریسٹورنٹ میلز. آنٹیریو اور اٹلانٹک پروونسز جو ہیں اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی فیڈرل سیلز ٹیکس جو ہے اس کو بلینڈ کیا گیا ہے ایک ہارمونائز سیلز ٹیکس کے اندر, جس کا کہ مطلب ہے کہ جو کینیڈینز وہاں پہ رہتے ہیں ان کو لارجر جو ہے وہ GST ٹیکس بریک ملے گا, باقی جگہوں پہ 5%. ان جگہوں کے اوپر جو اٹلانٹک پروونسز 13-15% ان کو ملے گا, تو وچ از ویری ویری سبسٹینشل. تو یہ جو ہے اب ڈیٹیلز جو ہیں کل تک سامنے آئیں گی, پتہ چلے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کون کون سی باتیں مانی ہیں اور کون سی نہیں مانی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب کینیڈا کے بہت سارے حصوں کے اندر ہیزرڈس ویدر جو ہے اس کی رپورٹ آ رہی ہے کہ بہت سارا فریزنگ جو رینز ہیں اور ونٹر سٹارمز جو ہیں اور جو ہے فریزنگ ڈرزل جو ہے وہ آنے والی ہے. نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبراڈور میں 130 km/h کی گسٹ چلے گی اور 35 cm تک سنو پڑے گی. مونگٹن اور جو ساؤتھ ایسٹ نیو برنزوک ہے وہاں پہ بھی یہ بہت زیادہ ہیوی رینز اور ونڈ جو ہے وہ چلے گی. اس میں 25 mm تک رین فال کا ہے اور جو ونڈ گسٹس ہیں وہ 70 km/h آئیں گی. آج بہت سارے جو سکول بسز تھے ان کو بھی کینسل کیا گیا تھا. فریزنگ رین اور فریزنگ ڈرزل جو ہے وہ پارٹ آف جو ہے وہ آنٹیریو کے اندر بھی دیکھا گیا اور اس ویک میں دیکھا جائے گا اور آٹوا میں بھی دیکھا جائے گا, کیونکہ آٹوا میں تو ویسے بھی ویدر اسٹیٹمنٹ جو ہے ان افیکٹ ہے. جی ٹی اے اور ڈرہم ریجنز میں بھی فریزنگ رین جو وارننگ ہے وہ ان پلیس ہے. तो बचो भाई जब तक बच सकते हो, क्योंकि जो एनवायरमेंट कनाडा वो कह रहा है कि अननेसेसरी ट्रैवल आप ना करें, अगर आप बच सकते हैं तो आप बचें। ठीक है, टोरंटो पुलिस जो है उसने अब आज बताया कि ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारा जो बिजी सबवे स्टेशन थे इंक्लूडिंग यूनियन स्टेशन, उसके अंदर बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स आए। क्राउडिंग इसीलिए देखी गई क्योंकि सिग्नल के बहुत ज्यादा इशू आ गए थे। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने लिखा कि सर्विस को इंटरप्ट किया गया है यूनियन स्टेशन, ब्लूर्स, सेंट क्लेयर, यॉर्क मिल स्टेशन के ऊपर। टीडीसी के स्पोक्स पर्सन जो है स्टुअर्ट ग्रीन उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी लेकिन सर्विस को सुबह 8 बजे शुरू किया गया, लेकिन ये इशू जो था इसने 20 मिनट्स के डिलेज जो है लाइन वन के ऊपर क्रिएट किए। इसके बाद जो दूसरे स्टेशन के ऊपर जो ओवर क्राउडिंग और वो डिलेज हो गए थे वो रिज्यूम हुए। पुलिस ने वैसे लोगों को कहा था कि अगर आप ओवर क्राउडिंग किसी जगह पे देख रहे हैं तो वहां पे ना जाएं। मतलब असी अपना काम नहीं करना है। अगर ओवर क्राउडिंग है, आपको लग रहा है कोई आपको छुरी मार देगा या आपका पर्स चोरी कर लेगा, प्लीज उधर ना जाओ क्योंकि हमने अपना काम नहीं करना है। ठीक है, उधर नहीं जाना आपने जहां ओवर क्राउडिंग है, बस ये पुलिस ने आपको बताया, तो प्लीज आप पुलिस की बात मानो। ठीक है, जैसे माजिद भाई को उन्होंने बताया, माजिद भाई तुसी उन कोई भी जड़ी एक्सपेंसिव गड्डी नहीं लेनी क्योंकि जब भी लोगे चोरी होगी, क्योंकि पुलिस ने कहा हम अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए माजिद भाई आपने अच्छी गाड़ी नहीं लेनी। तो जनाब आज भी उन्होंने कहा कि कहीं पे आप ओवर क्राउडिंग देख रहे हो तो मत जाओ, वहां पे कुछ भी हो सकता है। कनाडा पोस्ट जो है जी, आपको पता ही है 55,000 उसके अंदर जो है वो वर्कर्स हैं। आज 25th डे है और इनकी जो स्ट्राइक है अभी भी चल रही है, और वो कहते हैं जी अभी भी हम जो रिस्पांस है कनाडा यूनियन ऑफ पोस्टल वर्कर्स जो है उनसे हम कर रहे हैं, और जिन्होंने भेजा था हमको उसको रिव्यू हम कर रहे हैं, और बिल्कुल हम निगोशिएटिंग टेबल पे वापस आने को तैयार है। और भाई जान 2 साल से तो निगोशिएटिंग टेबल पे आप आ रहे हो तो फिर हासिल क्या कर रहे हो, तो जी अभी भी कह रहे हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि ये जो है हम कमिटेड है इनके साथ बातचीत करने में। ये स्ट्राइक जो थी कनाडा पोस्ट की नवंबर 14 से शुरू हुई थी, और बहुत सारा गवर्नमेंट को कहा गया था कि आप इसके अंदर इंटरवेंशन करो, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम बिल्कुल स्टेप इन नहीं करेंगे कि ये यूनियन और जो कनाडा पोस्ट है ये आपस में बात करें। अब लेकिन इसके होते हुए कनाडा पोस्ट जो है उसने कहा कि एक न्यू कैंपेन इन्होंने चलाई है क्रिसमस के लिए, स्प्रेडिंग क्रिसमस चीयर, ब्रिंगिंग कम्युनिटी टुगेदर फॉर लव केयर गिविंग, ये इन्होंने लॉन्च की है आज नॉर्थ यॉर्क हार्वेस्ट फूड बैंक के अंदर। और कनाडा पोस्ट मेल के जो करियर हैं नहन फेही, उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल ये इनिशिएटिव जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं फॉर किड्स, क्योंकि वो लेटर जो लिखना चाहते हैं सेंटा क्लॉज को वो हम बिल्कुल उसको पहुंचाएंगे। और इसके अलावा अगर आप इस फूड बैंक में आते हैं एट 116 इंडस्ट्री स्ट्रीट, तो अगर आप कोई नॉन पैरिशेबल फूड आइटम्स भी लाना चाहते हैं तो आप लाके इधर डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे है। और जनाब वीकेंड की सबसे बड़ी खबर थी फॉल ऑफ सीरिया। तो आपको पता ही है कि जो अपोजिशन पार्टी थी वो उन्होंने जीता। मेरी वीकेंड के ऊपर मेरे जो सीरियन फ्रेंड्स हैं दुबई में उनके साथ मेरी बातचीत हुई। आप सोचें कि इतनी ज्यादा सेलिब्रेशंस ना सिर्फ सीरिया में पूरी दुनिया के अंदर थी। और आपको पता है सीरियंस क्या मुझे कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर हमारा मुल्क अब इसराइल भी रूल करता है ना तो हम उसको भी मानेंगे क्योंकि हमने इतना ऑपरेशन जो है वो फेस किया। आपको पता ही है कि यहां पर जिस वक्त सिविल वॉर आई थी तो 500,000 बंदा जो था इन्होंने बशार अल असद की रजीम ने मार दिया था, उसमें से 300,000 सिविलियंस थे। और एक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन आई थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 2254, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि इस एग्रेसिव रजीम को खत्म करो और यहां पे जो है इलेक्शंस लेकर आओ। लेकिन जाहिर है जी बशार अल असद पिछले 50 ईयर्स ओवर से एक ही खानदान ये अल असद फैमिली जो है ये जो है इधर रूल कर रही थी, और इंतहाई जो है डिक्टेटोरियल इनका स्टाइल था। बहरहाल जी ये सारी दुनिया के अंदर सेलिब्रेशंस जो हैं बशार अल असद की गवर्नमेंट जब खत्म हुई तो उसके होते रहे। और जो ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो डमास्कस के अंदर पहुंच के और उन्होंने जो है प्रेसिडेंट साहब जो हैं अब बशार असद साहब वो मुल्क से भाग गए। और रशियन मीडिया ने फिर बताया कि जी इन्होंने असाइलम ली है रशिया में, जो उन्होंने उनको ऑफर की है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं डमास्कस में पहुंचे हैं सिंस 2018, जब सीरियन ट्रुप्स ने ये कैप्चर कर लिए थे सारे आउटस्कर्ट्स के जो एरिए थे जब ईयर लॉन्ग सीज चलता रहा था, तो वापस इन्होंने किया था। लेकिन इस दफा तो यही लगा कि जो सीरियन मिलिट्री भी थी वो भी कह रही थी कि हम अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, और उन्होंने पोस्ट छोड़ दी जब ये ऑपोजिशन के लीडर्स वहां पर आए। सीरिया के अंदर वॉर जो थी जब अरब स्प्रिंग आया था 2011 में, तो उस वक्त ये अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट द अल असाद रूल, और उसके बाद फिर ये फुल ब्लोन जो है पिछले 14 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये चल रहा है। व्हाइट हाउस पे बाइडन साहब से पूछा गया कि आपको क्या पता है कि अल असाद कहां है, तो उन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं है, लेकिन आखिरी वर्ड्स तो मेरे तक पहुंचे थे उसमें यही है कि ये मॉस्को तक पहुंचा है। और जैसे ये बात पहुंची कि जी ये अल असाद जो है ये یہ گیا تو سیریا کے اندر لوگ جو تھے اس کا جو بڑا بہت ہی ایکسپینسو گھر ہے اس کے اندر وہ گھس کے وہی سین تھے جو کہ حسینہ واجد کے ساتھ ہوئے تھے. جب وہ بھاگ کے انڈیا میں گئی تھی تو اس کے گھر میں گھس کے رینسیک کیا تھا نا لوگوں نے, اس کی ساڑیاں پکڑی اور بھی بڑا کچھ, وہی سین تھے. محمد البشیر جو ہیں, اس وقت جو نیوز آئی ہے ہمیں کوئی ایک گھنٹہ پہلے, محمد البشیر فارمر جو منسٹر ہیں جن کا تعلق اسی اپوزیشن جو پارٹی ہے حیات تحریر الشام ان کے ساتھ جو ہے, یہ اب ایک ٹرانزیشنل یعنی کہ جس کو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ بنائیں گے ڈمسکس کے اندر, اور تحریر حیات تحریر الشام جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک آف شوٹ ہے القاعدہ کی. البتہ جو ان کے جولانی ہیں جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمارا کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جی اسرائیل نے فوراً امیڈیٹلی جو ٹیریٹوری تھی سیرین کنٹرولڈ گولان ہائٹس اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اور انہوں نے جو سیرینز ہیں وہ جو اس ولیجز میں رہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ اپنے گھروں میں رو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گولی چلے گی. نتن یاہو نے کہا کہ جی میں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ آپ یہ جو بفر زون ہے گولان ہائٹس کا جس کو کہ اسٹیبلش کیا گیا تھا 1974 میں آفٹر سیز فائر اگریمنٹ بٹوین سیریا اینڈ اسرائیل, میں نے اپنی ملٹری کو کہا کہ اس کے اوپر قبضہ کرو کیونکہ بشار الاسد کے جانے کے بعد یہ ڈیکیڈز اولڈ ڈیل جو ہے یہ کلیپس کر گئی ہے, اور جو سیرین سولجرز ہیں انہوں نے اپنی پوزیشنز خالی کر دی ہیں. اسرائیل جو تھی اس نے 1967 کی وار کے بعد بھی یہ سارے علاقے جو ہیں ان پہ قبضہ کر کے انیکس کیا تھا, پھر اس کے بعد سیز فائر ڈیل ہوئی تھی اور یہ اس علاقے اس پوری ایریا کو بفر زون بنایا گیا تھا. ساری دنیا نے یہ جو اسرائیل کا انلیگل آکوپیشن آف سیرین ٹیریٹوری تھا اس کو بہت کنڈیم کیا تھا ایکسپٹ فار یو ایس, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا یہ یو ایس تو ہیومن رائٹس کے بہت بڑے متوالے ہیں نا اور بہت زبردست فیئر پلے پہ جو ہیں وہ قائم ہے انکل سیم, تو ظاہر ہے کہ انکل سیم نے کیوں اس کو ماننا تھا, انکل سیم کا تو یار ہے اسرائیل تو ایسے ہے. تو جناب یہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اس وقت جو ہمارے پاس نیوز آئی ہے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اس میں بتایا گیا کہ سعودی عربیہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریاکشن شو کیا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے سیریا کے علاقے کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا. بہرحال جی تسی کہندے رہو, جو جڑا انکل سیم ہے انہوں نے پیچھے کھلوتا ہے تو اب کیا آئے گا. اچھا جناب, اب جب یہ خبر آئی تو ٹرمپ صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ جی ٹرمپ صاحب آپ جو ہے کیا کرو گے اس میں, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل انوالو نہیں ہوئیں گے سیریا کے اندر, یہ سیریا کی جو لانگ سول وار چلتی رہی ہے اور میری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کچھ لینا دینا اس کے ساتھ نہیں ہوئے گا. اور اس کا مطلب یہ ہے جو ایکسپرٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو یو ایس کی گورنمنٹ بہت عرصے سے کرڈش لیڈ فورسز کو ریجن کے اندر سپورٹ کرتی تھی, ٹرمپ صاحب کی گورنمنٹ جو ہے اس کا سپورٹ جو ہے وہ بھی چھین لے گی. سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ سیریا از ان میس بٹ دے آر ناٹ اوور فرینڈس, یو ایس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, ناٹ اوور فائٹ, ڈونٹ گیٹ انوالوڈ. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن ٹریل کے اوپر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے تو انہوں نے پش کیا تھا امریکہ فرسٹ کی پالیسی کو پھر سے, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ یعنی کہ ان کا سمپل مطلب یہ تھا جو ہماری زبان میں کہ کسی پھڈے میں ہم جی اب ٹانگ نہیں اڑائیں گے, جو ٹرمپ صاحب کی ہمیشہ پالیسی ہوتی ہے. لیکن یو ایس الائنسز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اب وہ شاید یہاں پہ ڈاما ڈول ہوئیں گے, اور لیکن یو ایس کا کہنا ہے جی کہ ہماری چونکہ کوئی بھی فارمل ڈپلومیٹک ٹائز نہیں تھے بشار الاسد کے ساتھ تو اس لیے ہم کو اس کے اندر انڈلج بھی نہیں کرنا ہے. یو ایس جو تھی وہ بیک کرتی تھی سیرین ڈیموکریٹک فورسز, کردش لیڈ کوالیشن بیسڈ ان نارتھ ایسٹ جو کہ فائٹ کرتی تھی آئیسس کو, لیکن اب ٹرمپ صاحب کے بیان سے لگ رہا ہے کہ وہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو بھی بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سیریا کے جو ہیں اپوزیشن آرمڈ گروپ حیات تحریر الشام جو ہے انہوں نے یہ ڈمسکس جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے تو دیٹس آل رائٹ, ہمارا جو ہے اس کے ساتھ کچھ لینا نہیں ہے. ابو محمد الجولانی جو کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں اور حیات تحریر الشام کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے لوگوں کو کہا جی کہ یہ بڑا اچھا وقت ہے, اللہ کے سامنے جھکو, یہ ہسٹری ہم نے کریٹ کی ہے, ہم ایک نیو سیریا کریٹ کریں گے اور یہ پوری اسلامک دنیا کے لیے پھر سے جو ڈمسکس ہے وہ ایک لائٹ بن کے ابھرے گا. آپ سب لوگوں کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ یہ ٹیرنکل رول سے ہمارا جو ہے وہ چھوٹی ہے, جان چھوٹی ہے. ان کا ایک انٹرویو ابھی آیا ویکینڈ کے اوپر سی این این پہ جس پہ مسٹر جولانی سے پوچھا گیا کہ جولانی صاحب آپ جو ہیں آپ تو اب جو ہے ظاہر ہے کہ ایک سنی کنٹریز کو بنا دیں گے کیونکہ پہلے جو ہے سیریا کو جو ہے وہ ہیلپ کرتا تھا رشیا اور ایران, تو اب آپ نے جب قبضہ کیا ہے یعنی کہ آپ گورنمنٹ آپ سیٹ اپ کر رہے ہو تو آپ کی تو سنی گورنمنٹ ہوگی کیونکہ آپ لوگ جو ہے سارے سنی ہو, تو آپ کے ملک میں تو بہت سارے کرسچنز اور جو شیعہ ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو اس کے اوپر جولانی صاحب نے کہا جی کہ کیونکہ انہوں نے کہا سی این این کی جو رپورٹر تھی انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ایک ایکسٹریمسٹ سمجھا جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے ان کے ساتھ, انہوں نے کہا جی کہ میرا ایکسٹریمزم کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہمارا القاعدہ کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, اب ہم بالکل ڈفرنٹ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ ایجز سے رہ رہے ہیں, سیریا ان کا بھی ملک ہے اس لیے مائنورٹیز جو ہے وہ بالکل کوئی فکر نہ کریں, وہ بالکل یہاں پہ اچھے سے رہ سکتی ہیں, وچ از ویری گڈ بیان نائس. تو بہرحال اب جو ان کے آگے ہیں فارمر منسٹر بھی محمد البشیر
वो अब ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो सेटअप कर रहे हैं डोमेस्कस में, तो देखते हैं आगे कैसे चलती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने ये भी कहा है जी कि मैंने पुटिन को कहा है कि इमीडिएटली यूक्रेन के साथ सीज फायर आप करें एंड इट इज पार्ट ऑफ हिज एक्टिव एफर्ट्स एज प्रेजिडेंट इलेक्ट टू एंड वॉर। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा जी कि जेलेंस्की और यूक्रेन जो है मुझे पता है कि वो भी डील बनाना चाहते हैं और इस मैडनेस को रोकना चाहते हैं। एक टीवी के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे ट्रंप साहब, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल ये जो मिलिट्री की एड है इसको भी हम यूक्रेन को रिड्यूस करेंगे और यूएस, उन्होंने फिर से कहा कि यूएस विल पुल आउट ऑफ नेटो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है जो उन्होंने पहली दफा भी कहा था। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आपकी पुटिन से कोई बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा और जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा, इस वक्त मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि इस वक्त जो अगर मैंने कुछ कहा तो फिर उसका जो है वो जो निगोसिएशंस चल रही है वो इम्पीड होंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम जो है ये चाहते हैं कि ये वॉर जो है इमीडिएटली रुके। ये सारी बातें उन्होंने उस वक्त कही जब इनकी मुलाकात पेरिस में फ्रेंच और यूक्रेनियन लीडर्स के साथ हो रही थी और यहां पे सारे जो दुनिया के लीडर्स हैं वो आए हुए हैं टू सेलिब्रेट नोटर डैम जो इनका कैथीड्रल था बहुत बड़ा जिसको के आग में बिल्कुल पूरी तरह से जो जल गया था और उसको रिस्टोर किया गया था। तो सारी दुनिया के जो क्रिश्चियन वर्ल्ड के खासतौर पे जो लीडर्स थे वो सब के सब यहां पे जमा हुए थे टू सेलिब्रेट नोटर डैम कैथीड्रल रेस्टोरेशन। तो उसके ऊपर ये ट्रंप साहब जो है वो बातें कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने जो है वो कहा है जी कि हम ये स्टेप्स लेने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो क्रिटिक्स जो हैं अमेरिका में उन्होंने कहा जी कि ये बातें तो उन्होंने सारी कर दी हैं लेकिन ट्रंप साहब आपको पता है ये बड़े जज्बाती बंदे हैं, इनके सारे के सारे एडवाइजर्स जो इनके साथ इस वक्त पेरिस में गए हुए थे उनमें से कोई एक भी यूक्रेन के ऊपर एक्सपर्ट नहीं है। तो अब ये जो बातें रोक देंगे छोड़ देंगे कर देंगे तो ये उन्होंने कैसे की हैं, किसी से मशवरा लिया या क्या किया है, बहरहाल जी कुछ पता नहीं है कि क्या किया। बहरहाल आपको पता ही है कि ट्रंप साहब की अपनी मर्जी होती है, जो उनका दिल होता है वो करते हैं। एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल फिर से इंडिया से रिलेटेड जो है अब वो फिर से सामने आ गया है और इसमें जो है आपको पता है कि कौन है राइट हैंड मैन इस वक्त ट्रंप साहब का। ट्रंप साहब का राइट हैंड मैन जो है वो है एलॉन मस्क और इंडिया की लड़ाई जनाब आप एलॉन मस्क से शुरू हो गई है। पायन तुम कितने जा रहे हो पुलिस जो है, लेकिन इंडिया जो है वो एक तरह से सही भी कह रहा है। इंडिया की पुलिस जो है वो डिमांड कर रही है एलॉन मस्क की जो स्टार लिंक है कि वो तमाम के तमाम डिटेल्स और बायर का नाम और पेमेंट मेथड और रजिस्ट्रेशन उस डिवाइस इंटरनेट डिवाइस की दे जिसको के यूज किया है नेविगेशन और स्मगलिंग के लिए, क्योंकि इंडियन पुलिस ने इंटरनेशनल वाटर्स में जो उसके जो है वो इंडिया की तरफ आ रहा था उसमें पकड़ा है 4.2 बिलियन यूएस डॉलर का वर्थ ऑफ ड्रग्स। ये थी 6,000 किलोग्राम्स ऑफ मेथ जो कि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इट इज द बिगेस्ट सीजर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वो कहते हैं जी कि दो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं मीडिया से उन्होंने बात की कि ये जो अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो है इंटरनेट डिवाइस ये इसका ताल्लुक स्टार लिंक्स के साथ है और फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार लिंक डिवाइस जो है वो यूज की गई है नेविगेशन और इंडियन वाटर्स में पहुंचने के लिए और इस ड्रग्स को पहुंचाने के लिए। तो हम स्टार लिंक से पूछना चाहते हैं कि ये कौन है जिसने कि आपके साथ ये किया। असल में आपको अगर पता हो हिस्ट्रीज की थोड़ी सी स्टार लिंक जो है उसने लॉबिंग बैटल जो थी वो विन की थी बड़ी ही बिटर इनका जो दो बड़े बिलियनियर्स का फेस ऑफ था, एक तो इसके अंदर एलॉन मस्क थे और दूसरी तरफ सोचें कौन सा बिलियनियर था, इंडिया का मुकेश अंबानी। और बेतहाशा इन्होंने पैसा जो था वो खर्च किया था क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के कंपनीज कौन चलाएगा जिसको कि फिर जीता था इसने एलॉन मस्क की स्टार लिंक ने। तो जाहिर है कि मुकेश अंबानी भी कोई छोटा आदमी तो नहीं है, उसने भी पूरा जोर लगाया था मगर उसको मिला। लेकिन अब जब ये ड्रग्स पकड़े गए हैं तो उसके ऊपर अब क्वेश्चन आ रहे हैं कि एलॉन मस्क जवाब दो। अब एलॉन मस्क जवाब देंगे या नहीं वो तो अब आने वाले दिन ही बताएंगे। अच्छा जनाब, गेयर पेडरसन जो हैं यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एनवॉय फॉर सीरिया, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त तो लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं और अपोजिशन जो के जो फाइटर्स हैं उन्होंने भी बशार अल असद का रूल एंड कर दिया है। वैसे तो ये बड़ी खुशी की खबर है, ये एक डार्क चैप्टर था और इसमें बड़े डीप स्कार्स थे लोगों के, लेकिन मैं सोचता हूं कि शायद ये चीजें जो हैं ये नए चैप्टर्स खोलेंगी सीरिया के अंदर जिसके अंदर
पीस रिकंसिलिएशन और डिग्निटी होगी, जिसके अंदर लड़ाई मार कुटाई नहीं होगी और अपने लोगों के साथ जो ये सारा कुछ पहले होता रहा वो नहीं होगा। उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा वाटरशेड मोमेंट है सीरियन हिस्ट्री के लिए और 14 साल से लोग जो है सफर कर रहे थे और अनस्पीकेबल लॉस जो था वो फेस कर रहे थे, तो अब हम होप कर सकते हैं कि यहां पर सॉलिडेरिटी चलेगी और ये जो डिस्ट्रक्शन और डिटेंशन और अनटोल्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहे थे ये सारे के सारे खत्म होंगे। और इसके अलावा जो है आपको पता ही है कि जब ये लड़ाई फुल ब्लोन वॉर जो है शुरू हो गई थी 2011 के बाद, उसमें हजारों ही लोग जो थे वो मारे गए थे, बहुत सारे जो बोट्स में जा रहे थे वो बोट्स उनकी ड्राउन हो गई थी उसमें मारे गए थे, टेंट्स में जो है बेचारे रेफ्यूजीज सालों साल से रह रहे थे, खासतौर पर जो सीरिया के पास सॉरी तुर्की के पास है। तो उन्होंने भी कहा कि हम होप करते हैं कि जी यहां पे आई, तो मेरी जो बात हुई थी अपने सीरियन फ्रेंड्स के साथ जो एंड दे आर वेरी बिग जर्नलिस्ट इन मिडल ईस्ट, तो उन्होंने मुझे बताया कि मे बी इन विद इन 6 मंथ्स दे आर गोइंग टू, अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट है और विद इन 6 मंथ्स दे आर गोइंग टू होल्ड इलेक्शंस और वो, तो ये बहुत बड़ी खबर है जनाब। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि मिडल ईस्ट सारे के अंदर किंगडम है, तो एक वाहिद जो डेमोक्रेसी है वो इसराइल है और इसराइल बड़े अरसे से कहता था कि और कोई डेमोक्रेसी नहीं है इस एरिया में और इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड जरा इसराइल का साथ भी देती थी। और अगर ये इलेक्शन सीरिया के अंदर हुए तो जनाब सीरिया इज गोइंग टू बी द सेकंड कंट्री इन मिडल ईस्ट के जिसके के अंदर जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो आएगी। तो ऐसे है, ठीक है जनाब। This part of the program is being brought to you by Open My Cafe. यहां पे बड़ा टेस्टी खाना होता है, 1310 Dundas Street East Mississauga में ये है, आप इनको कॉल कर लें अगर आपको खाना खाना है यहां पे। इट इज द नंबर इज 416-526-6800 और जनाब असलम भाई के पास जाएं, पायल ज्वेलर्स में जबरदस्त किस्म के 22 कैरेट गोल्ड के ज्वेलरी है इनके पास, 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रामटन में है। आप इनको कॉल कर सकते हैं 9057907879। मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी, वो कहते हैं जी कि ये जितना गोश्त खाना है जनाब इस साल खा लो क्योंकि अगले साल ग्रोसरी दिया कीमत है, आमिर साहब जितना गोश्त बस खाना है खा लो, अगले साल जो है $800 बढ़ जाएंगे ग्रोसरी के, इसलिए जो है वो कहते हैं जी हमने बहुत सस्ता कर लिया, जितने मजे करने इन कर लो। तो जनाब उधर जाएं, चाय जलेबी और समोसा भी खाएं और इनको कॉल कर लें वसीम साहब को, इनका नंबर है 416-854-8962 एंड एमएक्स ट्रेवल। अगर आप हमारी तरह खुश नसीब नहीं हैं तो आप अप्लाई ना करें क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है। वो कहते हैं जी हम हज के बड़े जबरदस्त किस्म के सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम किस्म के वो दे रहे हैं पैकेजेस, अगर आपको हज करना है तो आप हमें कॉल करें जी, हमारा नंबर है 416-599-5200 एंड जनाब ये हैं सारी हमारी जो है खबरें। नहीं नहीं जनाब चल रही हैं। अच्छा ये पाकिस्तान के अंदर पाक प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया है कि जितने पाकिस्तानी फंसे हुए हैं सीरिया में अगर वो वहां से आना चाहते हैं तो प्लीज उनको लेकर आए। मतलब है कि मतलब है आना चाहते हैं, वहां पे मरमरी चल रही है तो क्या मतलब है? वो कहेंगे नहीं नहीं हमको भाई जान इधर ही रहने दो, हम नहीं जा रहे हैं। क्या ये बात है? अगर वो आना चाहते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको सेफली पाकिस्तान में लेकर आया जाए। उन्होंने कहा जी कि जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उसको यूज करें। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है डमास्कस में उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन डेस्क जो है वो बनाया गया है। उन्होंने कहा जी कि ये फैसिलिटेट करेंगे लोगों को सिक्योरिटी सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट के बारे में। फिर इसके अलावा ये जो मीटिंग थी ये अटेंड कर रहे थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स अहद चीमा, मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अताउल्ला तारोडर, स्पेशल असिस्टेंट तारिक फातिमी, सीनियर ऑफिशियल्स जो थे रेलेवेंट डिपार्टमेंट से वो सारे के सारे आज यहां पे मौजूद थे। हैं जी ख्वाजा आसिफ को तो मुझे लगता है नींद आ रही थी इस मीटिंग के अंदर, इतनी ज्यादा उनको नींद आ रही थी, उनको तो समझ नहीं आ रही थी मैं की करा कितने जाऊं हैं। भाई रात को सोया करो हैं। अच्छा जनाब JUIF के जो चीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरा मैं कहनी हूं इस मुल्क दे विच क्या क्या लोग हैं यार, ये कैसे कैसे लोग हैं, ये क्या बातें करते हैं जी, दुनिया कितने जा रही है, ये किसी चीज उते रो रहे हैं, मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल नहीं आ रहा है पायान, मतलब मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया फेडरल गवर्नमेंट को कि वो जो है क्लर्जी के बीच में यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स जो है उनके बीच में डिविजन पैदा कर रहे हैं ऑन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2024। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चार सदा में हो रही थी जिसमें कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो थे, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट जो है हम सारों को एक दूसरे के साथ लड़ा रही है। इससे पहले मौलाना की मुलाकात जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई थी और उसमें वो कह रहे थे, और इससे पहले वो कह रहे थे कि पीपीपी की गवर्नमेंट जो है जरदारी साहब वो भी इसके ऊपर कुछ काम करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये एक कॉन्स्पिरेसी जो है ये रिलीजियस लीडर्स के खिलाफ दिखाई जा रही है और कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी उसने कहा जी ये मदरसा रजिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स बिल जो है इसको हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि फौरन इसको जो है आप अप्रूव करो। जीशान साहब को दिखा दो जरा मौलाना साहब, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ये इसमें आप जो है क्यों आप दराड़ें डाल रहे हो, और हर रिलीजियस जो मदरसा है वो अपना खुद से फैसला ले सकता है। फैसला कैसे ले सकता है भाईजान, ये तो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा ना फैसला। लेकिन बहरहाल जी वो कहते हैं कि आप हम गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन तो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम जो था 2019 में हमसे वादा किया गया था कि हम लाएंगे, लेकिन फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इस्टेब्लिश भी की गई थी लेकिन फिर उसने कुछ भी नहीं किया। और हम तो कहते हैं कि इस बिल के अंदर एजेंसियां भी, नेशनल असेंबली, सेनेट सब जो है वो शामिल हुए। हमने ये बिल जो था प्रेजिडेंट जरदारी को भेजा था जो कि उन्होंने वापस कर दिया था, और हम चाहते हैं कि वैसे तो एवरी सेमिनरी जो है वो फ्री है टू रजिस्टर इटसेल्फ, फिर भी अगर इन सारों को जो आपने कहा था डायरेक्टरेट के नीचे लाया जाए उसका कंट्रोल होएगा तो फिर उसके ऊपर मूवमेंट होनी चाहिए। तो बस जी मौलाना साहब जो है ना मदरसों के पीछे ही चलते रहेंगे, तो जाहिर है कि अब इस मुल्क में मदरसे जो हैं वो तरक्की करेंगे तो आप कैसे करेंगे। 7 मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसने रिजेक्ट किया है जनाब गवर्नमेंट का पिटीशन टू गेट परमिशन फॉर मिलिट्री कोर्ट्स टू अनाउंस केस वर्डिक्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली आज हियरिंग सुन रही थी और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे कि सिविलियंस के जो केसेज हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाए जाएं। अगर हमने इस तरह की कोई परमिशन दी तो इसका मतलब है कि हम अथॉरिटी देंगे मिलिट्री कोर्ट्स को कि वो सिविलियन के केसेज जो है कर सकते हैं। ये जो बेंच था ये इट वॉज हेडेड बाय जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और इस बेंच के अंदर शामिल हैं जस्टिसेस जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मजाहिर, सैयद हसन रिजवी, नईम अख्तर अफगान, शाहिद बिलाल हसन। तो इसके साथ साथ एक और जो लाई गई थी फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद खाजा की पिटीशन, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये केसेस रिलेटेड टू ट्रायल ऑफ सिविलियंस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो उसकी हियरिंग जो है पोस्टपोन की जाए अंटिल 26th अमेंडमेंट। तो इस इशू को भी उन्होंने कहा जी कि इसको आप जो है हम इसको बिल्कुल खारिज करते हैं, कोर्ट ने इसको कहा। इसके अलावा उन्होंने जो है जवाद खाजा साहब को फाइन भी किया गवर्नमेंट ने 20,000 के लिए। ये जो हियरिंग थी इसके अंदर खाजा साहब के जो काउंसिल थे उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिकग्नाइज करते हैं, तो काउंसिल साहब ने कहा नहीं जी मैं नहीं इस बेंच को रिकग्नाइज करता। तो जस्टिस मंदोखेल ने फिर बड़ी गुस्से से कहा कि फिर तुम कोर्ट रूम में क्या कर रहे हो, निकलो यहां से बाहर, यहां से जाओ। तो जो है वो जनाब फिर उनको निकाले गए, मतलब ये आप कैसे ये बातें कर रही हैं, गंदे बच्चे बने हुए। अच्छा जनाब पीटीआई जो है वो अब कहती है जी कि हम हर किसी के साथ, चाहे ह्यूमंस हैं चाहे एंजल्स हैं, सबके साथ हम बात, यानी कि अगर कोई इंसान है या फरिश्ते हैं, पता ही है आपको कि फरिश्ते हमारे मुल्क में कौन है ना, पता है ना पिंडी बॉयज का जो हमारे फियाज भाई कहते थे पिंडी बॉयज, तो पिंडी बॉयज फरिश्ते हैं और हम बाकी सारे जो हैं इंतहाई बकवास किस्म के इंसान हैं। तो वो कहते हैं जी कि हम इंसानों या फरिश्तों दोनों से बात करने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी चेंज जो है आई है पीटीआई के अंदर, और ये बातचीत की उन्होंने बात रखी है बिफोर देयर प्रपोज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पीटीआई के उमर अयूब खान जो थे वो पार्टी के अंदर कह रहे हैं कि फ्रेश निगोसिएशन पॉलिसी हम चला रहे हैं। इससे पहले पीटीआई कह रहा था कि सिर्फ हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगे। लास्ट वीक इमरान खान साहब ने कहा था कि हम वार्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई जाएगी अगर हमारी डिमांड्स न मानी जाए। एक्स के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पास एक ट्रंप कार्ड है, और उन्होंने फिर कहा था कि एक 5 मेंबर निगोशिएटिंग कमेटी बनानी चाहिए हेडेड बाय उमर अयूब एंड चीफ मिनिस्टर गंडापुर, साहिबजादा हामिद रजा, सलमान अक्रम राजा एंड असद कैसर। और उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट से आप बात करें 2 पॉइंट्स के ऊपर, कि एक तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं जो कि बिला वजह का झूठा ट्रायल के अंदर उसको डाला हुआ है उनको निकालें, और जुडिशियल कमीशन जो है एक बनाए जिसके अंदर प्रोब किया जाए May 9, 2023 के वाकयात, और इसके साथ साथ वही कमीशन जो है ये भी प्रोब करेगा कि लेट नाइट क्रैकडाउन पीटीआई के प्रोटेस्टर्स पे November 26 को किसने किया। और जनाब पाकिस्तान का जो रैंक है वो लोएस्ट है ग्लोबली फॉर इंटरनेट स्पीड्स इन अक्टूबर। देखो भैया इतना आपने अगेन तह लगाया इस रिपोर्ट पे, वो आप हमसे पूछ लेते हैं हम आपको बता देते हैं। तो ये जी ये ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने ये कहा है, उन्होंने कहा जी कि 111 कंट्रीज का हमने डाटा जो था वो जमा किया था, उसमें से पाकिस्तान जो है 100 नंबर पे है। देखो पाकिस्तान किसी चीज में तो तरक्की कर रहा है ना, नीचे से ही हो कोई बात नहीं, तो आपने दिल छोटा नहीं करना, घबराना नहीं है, है? उन्होंने कहा जी कि इंटरनेट की स्पीड जो डाउनलोड थी वो थी 20.61 Mbps और जो अपलोड स्पीड थी वो 8.53 Mbps थी। इतने तो लोगों की डेथ हो जाए अगर इतनी हो गए थे। तो वो कहते हैं जी कि जिस वक्त हमने ब्रॉड बैंड स्पीड्स का भी देखा तो उसमें पाकिस्तान 158 कंट्रीज में से 141 नंबर पे था। डाउनलोड स्पीड जो थी 15.60 एमबीपीएस थी और अपलोड स्पीड जो थी 15.53 एमबीपीएस थी और लोग जो थे बेतहाशा ही इंटरनेट डिस्ट्रप्शन को फेस कर रहे थे, ना तो ब्राउज कर सकते थे, ना कोई चीज डाउनलोड कर सकते थे, मीडिया शेयरिंग नहीं कर सकते थे। ऑफिशियल्स ने कहा जी कि हम एक वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सेटअप कर रहे हैं और हम बड़े टेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो इंटरनेट फायरवॉल्स हैं इसके लिए, और ये ट्रायल पहली जो थी जुलाई में और सेकंड अगस्त में आई थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया था। नहीं दिया तो था, वो उन्होंने कहा था कि जी शार्क काट गई है, वह तो है ऐसे कहा तो था गंदे बच्चों ने। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर जो एयरलाइंस हैं बहुत सारी और जो स्कूल्स हैं उनको बहुत सारे होक्स बॉम्ब थ्रेट्स जो हैं वो मिले हैं। इंडिया की जो एयरलाइंस हैं उनको 719 होक्स बॉम्ब थ्रेट मैसेजेस सिर्फ इन 2024 आए हैं और टोटल नंबर जो है वो 809 है इन द लास्ट 5 ईयर्स। जो गवर्नमेंट डेटा आज पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया उसके मुताबिक मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन मुरलीधर मोहल जो हैं उन्होंने कहा कि इंडियन एयरलाइंस जो उन्होंने रिपोर्ट किए थे 4 थ्रेट्स इन 2020, 2 इन 2021, 2022 में 13 ऐसे मैसेजेस थे और 2023 में 71 थे, जो कि अब बेतहाशा बढ़ गए हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को कहा गया है कि वो अपने प्रोटोकॉल्स को बहुत ज्यादा सख्त करे अगेंस्ट सच थ्रेट्स। इसके साथ साथ 40 स्कूल्स इन दिल्ली जो हैं उनको भी आज ईमेल्स में बॉम्ब थ्रेट्स जो हैं वो मिले थे। दिल्ली की जो पुलिस एंड बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड जो था वो इन दिल्ली के स्कूलों में पहुंचा, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट नहीं मिला था। तो ये सारे के सारे 40 के 40 थ्रेट्स जो थे ये होक्स थे। बीजेपी जो है जी उसने बहुत ज्यादा जो है वो एलिगेशंस लगाए हैं सोनिया गांधी के ऊपर कि उनके ताल्लुकात हैं द ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन जो कि कश्मीर की आजादी की बात करता है। ये बहुत ही सीरियस एलिगेशंस आज बीजेपी ने लगाए हैं। उन्होंने अपने एक्स के ऊपर कहा कि इनके जी बड़े ताल्लुकात हैं जो ये शो करते हैं कि फॉरेन एंटिटीज जो है वो इंडिया के एक्सटर्नल जो इंटरनल अफेयर्स है उसके अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। हालांकि यूएस जो है उन्होंने बीजेपी की इस एलिगेशन को सबको डिसमिस किया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि ये इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के एमपी जो है निशिकांत दुबे उन्होंने कहा जी कि हम 10 क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से लोकसभा के अंदर, और ये जो मीडिया पोर्टल है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन जिसको जॉर्ज सोरेस चलाते हैं, इन्होंने जो है ये इंडिया की इकोनॉमी को डैमेज करना चाहते हैं और मोदी जी की गवर्नमेंट को का नाम खराब करना चाहते हैं, और सोनिया जी की जो चेयरमैनशिप है फॉर राजीव गांधी फाउंडेशन, हमें लगता है कि उसके ताल्लुकात सोरोस फाउंडेशन के साथ हैं। उन्होंने कहा जी कि राहुल गांधी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोदी जी उसके अदानी के बारे में बात करते हैं और वो सारी की चीज लाइव कास्ट की जाती है ओसीसीआरपी पे। इसका क्या मतलब है? अदानी को अगर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो सब कुछ मुल्क में रहना चाहिए, बाहर का अदारा जो उसको कैसे शो कर रहा है। उन्होंने फिर कहा, इन्होंने जो निशिकांत दुबे साहब हैं उन्होंने कहा जी इसके अलावा कांग्रेस के एमपी शशि थरूर साहब तो बड़ा ओपनली और पब्लिकली कह चुके हैं कि सोरोस जो है वो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, तो इसको नोट किया जाए। भाईजान ये क्या चल रहा है, नोट कर लिया ना आपने? बिल्कुल नोट करें, ठीक है जी। अच्छा जनाब, दीनू मोरिया जो हैं वो सबसे पहले तो जनाब आ गया किस्सा ब्लैक मार्केट में टिकटिंग करने का। इसके ऊपर दिलजीत दोसांझ जो हैं वो बहुत ज्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा जी कि इनका जो ऑन गोइंग दिल ल्यूमिनाटी इंडिया टूर 2024 है, इसमें मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस से 10 रूपये का टिकट लेके 100 रूपये का बेच रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? ये अपनी जो इंडिया लेग शुरू करने वाले थे दिल्ली के अंदर, तो वो कहते हैं जी कि मुझे पता चला है कि इसके कॉन्सर्ट के टिकट्स जो हैं ब्लैक मार्केट में सेल किए जा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको पकड़ने की जरूरत है, उसमें एक जो आर्टिस्ट है उसका क्या लेना देना है। अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने लिखा, एक वीडियो उन्होंने डाली जिसमें कि वो कहते हुए सुन रहे हैं कि अगर कोई ब्लैक में टिकट बेच रहा है तो उसमें आर्टिस्ट का कभी भी कोई कसूर नहीं होता है। और जनाब दीनू मोरिया साहब जो है 49 ईयर्स के आज हो गए हैं और अब नजर आएंगे हाउसफुल 5 के अंदर आफ्टर 15 ईयर्स। उन्होंने कहा जी कि उनसे पूछा गया कि आप 15 साल के बाद क्यों फिल्मों में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे टेरिबल फिल्म जो हैं वो पेश की जा रही थी, पहले तो मुझे समझ नहीं थी, बट एज यू ग्रो ओल्डर तो आपको चीजों की रिश्तों की समझ आने लगती है और आप इवॉल्व करने लगते हैं और फिर आप रियलाइज करते हैं कि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसलिए अब ये अच्छी फिल्म आई है तो अब मैं कर रहा हूं। इनको लास्ट देखा गया था एक वेब शो मेंटल हुड में 2020 में जो आया था, जिसमें इन्होंने सिंगल डैड का जो है रोल किया था। तो इनसे पूछा गया कि क्या आप सारी जिंदगी सिंगल रहना चाहते हैं? वो कहते हैं नहीं, लुकिंग फॉर द राइट पार्टनर, और मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और जब मुझे मेरा प्यार मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है जी ऐसा है। और जनाब कुछ अर्सा पहले एक चैट शो हुआ था केस तो बनता है, जिसमें कि रितेश देशमुख जो हैं बात कर रहे थे अभिषेक बच्चन के साथ, और उन्होंने उनको बहुत ज्यादा छेड़ा और उन्होंने कहा कि क्या बात है, दूसरा बेबी कभी आने वाला है, है जी। तो आपको पता ही है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में डिवोर्स के बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं वो चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, रितेश ने कहा कि अमिताभ, ऐश्वर्या, आराध्या ये सारे ए से हैं, तो फिर आप लोगों ने जया और श्वेता ये दो नाम कैसे खराब किए हैं जी, ये दो नाम आपने कैसे ऐसे जाने दिए। तो उस पे जो है अभिषेक हंस पड़ा, कहता जी मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आराध्या के बाद क्या इरादा है, तो उन्होंने कहा जी अब देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके पास ये सब चीजें जाएंगी। तो रितेश ने कहा अब इतना तो हम वेट नहीं कर सकते हैं, तो अभिषेक ने बहुत ब्लश किया और उन्होंने कहा उम्र का लिहाज किया करो यार, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, है जी। तो ऐसी बातें हूं। और जनाब ऑस्ट्रेलिया ने किया स्ट्रांग कमबैक इन 5-मैच टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया बाय गेटिंग 10-विकेट विन इन सेकेंड टेस्ट, और इन्होंने जो फर्स्ट सेशन था उसी के अंदर ये गेम थर्ड डे पे पूरी कर ली थी इन द पिंक बॉल रिकॉर्ड एट एडिलेड ओवल, और अब सीरीज जो है 1-1 से बराबरी पे है। जो तीसरे दिन का खेल था उसमें इनको सिर्फ 19 जो थे चाहिए थे टू विन। इन्होंने इंडिया को आउट किया था फॉर 175 इन देयर सेकेंड इनिंग्स। स्किपर जो पैट कमिंग्स हैं ही प्लेड ऑन द ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने 5 विकेट्स लिए जनाब आमिर साहब 57 रन से, और जो ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक किया और जो इनकी डिफीट हुई थी ओपनर में इन पर्थ उसको इन्होंने आज लेवल किया। पीसीबी के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब वो कह रहे हैं जी कि मुझे अच्छे की उम्मीद है फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वो पाकिस्तान में होएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे जब ये लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड को विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि डिस्कशन अंडर हुए हैं और कभी भी मेरे पास जैसे ही न्यूज आएगी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव रोल है और हम ऐसा पॉजिटिव रोल पे प्ले करते रहेंगे और नेशन को हम बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेरे पास आईसीसी की तरफ से भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आईसीसी जब प्रोग्रेस करता है तो सारी दुनिया में क्रिकेट भी प्रोग्रेस करती है, लेकिन अगर आईसीसी को डेंट किया गया तो फिर वो सारी दुनिया की क्रिकेट जो है उसको अफेक्ट करेगी। आपको पता ही है कि वीकेंड के ऊपर जो मीटिंग होने वाली थी आईसीसी की वो पोस्टपोन फिर से एक दफा कर दी गई थी, क्योंकि आईसीसी ने कहा था कि बीसीसीआई ने जो पीसीबी की डिमांड्स हैं उसका जवाब नहीं दिया है। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या हो रहा है, क्या अच्छा होने वाला है, वो कहते हैं जी अभी मैं आपको कुछ भी डाइवर्ज नहीं कर सकता, आने वाले दिनों में बताऊंगा। और जनाब बॉलर्स ने दिया जबरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस, क्योंकि बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप के जो लड़के हैं उन्होंने डिफेंड किया अपना टाइटल और 59 रन से हराया इंडिया को एट अंडर 19 एशिया कप फाइनल इन दुबई, और दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये गेम हो रहा था। ये जो था इन्होंने जो बांग्लादेश के जो लड़के थे उन्होंने 199 रन दिए थे इंडिया को, इंडिया को उन्होंने आउट किया 139 रन पे इन 35.2 ओवर्स में, और उनके कोई भी प्लेयर्स जो है कोई अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर सके। बांग्लादेश ने लास्ट ईयर का जो अंडर 19 एशिया कप था वो भी जीता था एट द सेम वेन्यू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें कि उन्होंने जो होस्ट थे यूएई उसको फाइनल के अंदर डिफीट किया था। तो दे वेरी सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर टाइटल। और जनाब हर ते सब कलो वड़ी खबर ए जनाब F1 रेसेस आए है, क्या प्यारी रेसेस हो रही थी अबू धाबी के अंदर, और अगर आप देख रहे थे तो यू वुड हैव गॉन गागा। मैकलेरन के जो लैंडो नॉरिस हैं जनाब ही वॉन द अबू धाबी ग्रांड प्री टू सील द टीम्स फर्स्ट कंस्ट्रक्टर्स टाइटल सिंस 1998 एट यास मरीना सर्किट। नॉरिस जो है आपको पता है कि जिस वक्त मैकलेरन की पहली विन हुई थी 1998 में उस वक्त ये पैदा भी नहीं हुए थे, इन्होंने कभी पता ही नहीं था इनको उसके बारे में। तो इन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया अपनी टीम को, बड़ा उन्होंने जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा जी कि हर बंदे ने, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं सबके लिए, दे वर्क वेरी, ऑल ऑफ अस वी वर्क वेरी हार्ड, और नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी माई ईयर टू। तो ये यंग सा बच्चा जो है इसने लैंडो नॉरिस ने किया कमाल किया है जी। और जनाब तकलीफें शुरू हो गई हैं यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वॉल्कर टर्क उन्होंने कहा है कि सऊदीया में जो ये हो रहा है 2024 का वर्ल्ड कप, इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि लेबर स्टैंडर्ड्स जो हैं फीफा उसको मेंटेन करे, क्योंकि यहां पे सारे स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए साउथ एशिया से लोग बुलाए जाएंगे। और हमको पता चला है कि सऊदी अरेबिया जो है माइग्रेंट लेबर स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो सोल कैंडिडेट था फॉर 2034 वर्ल्ड कप, और उन्होंने कहा था कि हम 15 स्टेडियम्स में ये मैचेस कराएंगे, जिसमें से कि 8 जो हैं वो स्क्रैच से कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, और ये जो हैं इसके अलावा 175,000 होटल रूम्स जो हैं उनको भी ऐड, यानी कि नए होटल्स बनेंगे। तो उसके लिए जाहिर है कि माइग्रेंट वर्कर्स को बुलाना पड़ेगा अंडर लेबर फ्रेमवर्क। लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि सऊदी अरेबिया के अंदर इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन हैं इन वर्कर्स के लिए। अच्छा तुहानू तुसी कनेडा के जरा देख लो की कर रहे हैं बेचारियां दा हाल है माइग्रेंट वर्कर्स दे नाल, मतलब है व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बहरहाल जी, फीफा जो है उसको बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि आपने कैसे ये सऊदी अरेबिया को दे दिया है, और उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, उन्होंने कहा जी कि ये बहुत क्लोज है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के, तो इसलिए जो है ये चीजें जो हैं हो रही हैं, वरना सऊदीया को ये नहीं देना चाहिए था। भाईजान कतर में जो हुआ है ना, दुनिया कहती है ऐसा कभी हमने वर्ल्ड कप देखा नहीं। अब जो सऊदी के अंदर होएगा ना वो भी आप याद रखेंगे। और की पिद्दी की पिद्दी का जो अब तुम की कराओगे मैचेस, देखो जरा ये जो भी मैक्लारन का ये जो मैंने अभी आपको खबर सुनाई है जो जीता है, ये यास अरीना मरीना आइलैंड के अंदर, जरा यास मरीना आइलैंड देखो, वो सर्किट देखो जरा F1 का, उसका अबू धाबी का। तुम की करोगे, दुबई में बार बार क्रिकेट मैचेस क्यों होते हैं? क्योंकि जो फैसिलिटीज उनके पास है वो आप लोगों के पास नहीं है भाईजान। तो आप ये जो अपनी बदनीयति है ना, ये बदनीयति अरब्स के खिलाफ आप निकालो, आप उनका किसी स्टैंडर्ड में मुकाबला, अपने मुल्क की हालत देख रहे हो, लीरो लीरो के लोग बाहर बैठे हुए हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, फकीर फिर रहे हैं, फकीरों की तरह यहाँ पे लोग, जो कहता है कि जी मैं 4 पैसे भी कमा रहा हूं, उसकी भी बेचारे की हालत देख लो, टुंड हो गए हैं, ऐसे टेढ़े हो गए हैं हाथ और पैर, गधों की तरह काम कर करके क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन आप करोगे और मैच करोगे उन अरब्स के जो उन्होंने अपने मुल्क में किए हैं। छोड़ो ये ह्यूमन राइट, ए पूरी नस्ल खत्म कर दी पैलेस्टाइन के अंदर उनकी, पैलेस्टीनियंस की इसराइल ने, वो ह्यूमन राइट्स आपको नहीं नजर आ रहे? 4 कोई पता नहीं वर्कर्स के साथ कोई कुछ हो गया होगा वहां पे सऊदी अरेबिया में, तो जी बड़े आपको ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं, और रहने दो अपने डबल स्टैंडर्ड्स। अच्छा जनाब, एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, क्योंकि फिर आप कहेंगे जी लड़कियों की कोई आप खबर नहीं सुनाते हैं, नहीं पहन हम लड़कियों की भी खबर सुनाते हैं जनाब। आयरलैंड की लड़कियां जो हैं उन्होंने विन किया जी क्लीन स्वीप 3-0 से ओवर बांग्लादेश इन T20 सीरीज इन सिलेट, और जो होस्ट थे वो देख रहे थे, चाहते थे कि ये तीसरा मैच असल में एटलीस्ट जीत रहे ताकि कंसोलेशन इनको विन मिल जाए। लेकिन जनाब जो इनकी स्किपर थी, फॉर्मर स्किपर लॉरा डिलनी, उसने जी बैक टू बैक चौके मारे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, उसकी वजह से जो है इन्होंने टूरिस्ट जो है इन्होंने जो है 4 विकेट विक्ट्री ली और 3-0 से क्लीन स्वीप किया, बल्कि व्हाइट वॉश किया है बांग्लादेश को। तो ये थी हमारी आज की,
ये थी हमारी आज की गर्मा गर्म खबरें और ब्रेकिंग न्यूज जो वो दे चुकी हैं ये बिशारत असद साहब की, ऑफिशियली जो है वो ज़ाइलम उन्होंने रशिया में ले ली है बशारत असद साहब। तो वो अब देखें रशिया में क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। और
लेकिन इसमें जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो मोहम्मद अल बशीर की थी कि वो उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट है ना वो सेटअप
तक की, हाँ
ये है कि उन्होंने सेटअप कर लिया इंटरिम
गवर्नमेंट। आने वाले वक्त में ये मूड भी किस करवट बैठता है, क्या हालात होते हैं, किस सेक्ट की हुकूमत बनाती है, कि सुन्नी है कि शिया, ये
सुन्नी है ये लोग, ये अलावी सुन्नी है,
ये सब सुन्नी है। पर अप टू डेट खबरें आपको आने वाले वक्त में ई आवाज टीवी और 770 AM डायल पर,
तो मैंने आपको भी सुनाया कि CNN पे उनका इंटरव्यू था,
रहेंगी बिल्कुल
जलानी साहब का, उन्होंने कहा वहां पे शिया भी हैं और क्रिश्चियन भी, उनके साथ तुम लोग क्या हाल करोगे, उन्होंने कहा जी कि नहीं
कुछ नहीं,
हर कोई जो है
वो मैंने कॉल कर दी,
तो उन्होंने कहा जी सीरिया हर किसी का मुल्क है, हम किसी के साथ कोई नहीं, सब मिलकर प्यार मोहब्बत से सीरिया मेरे।
चले जी, बहुत शुक्रिया सर जी आपका हमारे साथ शामिल होने का, एज यूजुअल अगर जिंदगी रही और आप जिंदा रहे
ठीक है
तो फिर कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तमाम सामईन का बहुत शुक्रिया, नाज़रीन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने का। अब इजाजत लेने का टाइम आ गया है, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आरफा मुजफ्फर साहबा की तरफ से, माजी जमाल साहब की तरफ से, हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत दीजिए। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।
मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बजते हो घुंघरू कहीं पे, आपके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, झरनों की मौज है वो मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना, पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
उसको मेरी जो जाए